गाथा में आप सुन रहे हैं नसरीन हिना की लिखी कहानी ब्लैकमेलर। लीजिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। कहानी में अब तक आपने सुना एमिला एक बड़े डॉक्टर की असिस्टेंट कम पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वजह थी कि कोई पसंद का लड़का न मिलना। फिर उसकी जिंदगी में डैनी आता है। उससे शुरुआती मुलाकातों के बाद दोनों करीब आ जाते हैं। अब आगे एमिला जब दोपहर को डैनी से ग्रैंड रेस्टोरेंट में मिली तो वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। बावजूद इसके उसकी आवाज में काफी शोखी थी। उसकी चहचहाहट सुनकर रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे लोग कई बार चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे थे, लेकिन वो अपने में ही मस्त थी। खाना खाने के बाद जब कॉफी आई तो डैनी ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं एमिला, ऐसी बात जो तुम यकीनन पसंद करोगे। ऐसी क्या बात है डैनी? खुदा के लिए जरा जल्दी बताओ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। कि तुम क्या कह रहे हो डैनी? मैं ठीक कह रहा हूं एमिला। सच्ची बात यह है कि शादी के बारे में सोचते सोचते मैं बीमार पड़ गया हूं। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सिर्फ $150 बैंक में है, और वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग आउट हो गया है एमिला। एमिला ने उसका हाथ थामकर नरमी से कहा, आखिर तुम इतना क्यों सोचते हो डैनी? तुम इस अजाब से निजात क्यों नहीं पा लेते? निजात आसान नहीं है एमिला। इसके लिए आमदनी के दूसरे रास्ते बनाने पड़ेंगे, दौलत हासिल करने के रास्ते तलाशने। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, एमिला उसकी तरफ झुकते हुए बोली, मैं कोई बुरा लड़का नहीं हूं, लेकिन चोर और बेईमान जरूर हूं, उसने धीमी आवाज में गर्दन झुकाकर कहा। डैनी, क्या तुम संजीदगी से बात नहीं कर सकते? मेरी तरफ देखो एमिला, क्या मैं तुम्हें संजीदा नजर नहीं आता? यकीन करो, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। डैनी ने कॉफी का घूंट अपनी हलक से नीचे उतार लिया ताकि अपनी आवाज पर काबू रख सके। उसने आगे कहा, एमिला, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए कुछ करो। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार तकलीफ दूंगा, ये बात मैं हमेशा हमेशा के लिए बदल जाऊंगा। कैसा काम? एमिला ने झुंझला कर पूछा। मैं सिर्फ एक दांव लगाना चाहता हूं एमिला। हाय, क्या चीज? बस तुम एक बार मेरी मदद कर दो। मैं ये सब कुछ अच्छी नीयत से कर रहा हूं ताकि हमारी आगे की जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजर सके। मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी मदद चाहता हूं कि तुम डॉक्टर ड्यूट के यहां से मेरे लिए कुछ फाइलें ला दो। ये तुम क्या? नहीं एमिला, कुछ कहने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसने एमिला की बात काटते हुए कहा। मैं तुम्हें फाइलें चुराने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ चंद घंटों के लिए उधार ला दो। मैं जल्दी से उन्हें देखकर तुम्हें दे दूंगा। तुम सुबह जल्दी से उन्हें उनकी जगह पर रख देना। हो सकता है मैं पहली ही बार अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। ये भी संभव है कि तुम्हें दूसरी या तीसरी बार भी इसी तरह से मेरी मदद करनी पड़े, लेकिन घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कि तुम क्या कह रहे हो डैनी? तुम्हें आखिर डॉक्टर ड्यूट की फाइलों की क्या जरूरत पड़ गई? ये तुम्हारे किस तरह से काम आएंगी भला? ये एक सॉलिड प्लान है, पिछली रात ही मेरे दिमाग में आया है। हो सकता है ये सिर्फ एक ख्याल हो, उसने अमिला को समझाते हुए कहा, देखो अमिला, बात यह है कि ये फाइलें बिल्कुल निजी होती हैं। रोगियों को कई बार अपनी निजी जिंदगी की हर तरह की जानकारी भी डॉक्टर को बतानी होती है, या डॉक्टर उनसे संबंधित हर तरह की सूचनाएं इन फाइलों में जमा करते हैं ताकि उनका बेहतर इलाज संभव हो सके। मैं ठीक कह रहा हूं ना? डेनी अपनी गर्लफ्रेंड एमिला से पूछता है कि जिस डॉक्टर के तुम असिस्टेंट हो उसके पास मरीजों की गोपनीय फाइलें तो होंगी। मरीजों ने डॉक्टर को कुछ ऐसी पर्सनल बातें भी बताई होंगी जो इन फाइलों में दर्ज होंगी। डेनी एमिला से कहता है, तुम्हारे डॉक्टर के पास कई अमीर मरीज भी होंगे, वो चंद डॉलर हमें दे सकते हैं जिससे उनकी दौलत में कोई कमी नहीं आएगी और हमारा काम बन जाएगा। हमारे लिए थोड़ी रकम भी बहुत होगी। ये सुनकर एमिला ने अपना पर्स उठाया और पैर पटकती हुई चली गई। दो हफ्ते तक उनके बीच तनाव बना रहा, लेकिन आखिरकार डेनी एमिला को मनाने में कामयाब हो ही गया। दरअसल डेनी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने फाइलें लाकर न दी तो वो आत्महत्या कर लेगा। तीसरे हफ्ते एमिला फाइलें लेकर डेनी के पास पहुंच गई। वो दर्जन भर से ज्यादा फाइलें लेकर गई थी। ये काम एमिला ने बड़ी होशियारी से किया था। छुट्टी के वक्त उसने एक बड़े लिफाफे में फाइलें डालकर उस पर एहतियातन लिख दिया, गुम होने की स्थिति में मिस एमिला को डॉक्टर ड्यूट के पते पर दे दिया जाए। ये सब काम सिर्फ 5 मिनट में हो गया। डेनी फाइलों को पढ़ने में व्यस्त हो गया और एमिला डेनी के लिए कॉफी बनाने लगी। डेनी, फाइलों को ठीक से रखना, ये बहुत जरूरी है, पेज आगे पीछे ना होने पाए वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एमिला ने उसे टोकते हुए कहा। ओह एमिला, मुझे पता है, मैं इतना गैर जिम्मेदार भी नहीं हूं, डेनी ने कहा। डेनी आधी रात तक फाइलों को देखता रहा। आखिरकार उसे अपने लिए एक खास केस मिल गया। उसने काफी देर से फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, ये केस HGH कौन है? ये मिस्टर हैरिसन है, बहुत बड़े आदमी हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अमीर भी हैं, लेकिन आजकल बहुत परेशान हैं। इनको और ज्यादा परेशान मत करना वरना इन्हें कुछ हो जाएगा। डेनी, इनकी परेशानी की वजह मैं जानता हूं। ये महोदय 54 साल के हैं और एक 17 साल की लड़की से इश्क फरमाते हैं। ये सारी डिटेल इनकी इस फाइल में मौजूद है, लेकिन क्या तुम्हें इनके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं है? हाँ, डॉक्टर ड्यूट मिस्टर हैरिसन के बारे में बात तो कर रहे थे, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे ये इश्क वाली बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। आपके मिस्टर हैरिसन को इश्क की लाइलाज बीमारी है और ये अपनी पत्नी की तरफ से परेशान है। इनका इरादा अपनी प्रेमिका से शादी करने का है, लेकिन ये राज उन्होंने अपनी पत्नी से छुपा कर रखा है। अब मैं इस राज की कीमत वसूल करूंगा। नहीं डेनी, ऐसा हरगिज़ न करना, एमिला ने जल्दी से कहा। ठीक है एमिला, मैं मानता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बूढ़े को यह भी शोभा नहीं देता कि वो अपनी पत्नी को धोखा दे और अपनी से कई गुना छोटी लड़की से शादी करे। इसलिए इसमें अफसोस करने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है डेनी, जैसी तुम्हारी मर्जी, एमिला ने हार मानते हुए कहा। एक पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन एमिला की डेनी से मुलाकात न हो सकी। दरअसल डॉक्टर ड्यूट के यहाँ काफी काम था और डेनी भी इन दिनों व्यस्त था। और फिर एक दिन डेनी ने उसे फोन किया। सुनो एमिला, मैंने मिस्टर एच को फोन किया था, मेरा निशाना ठीक बैठा है। डेनी, सोच लो, समझ लो, बाद में ऐसी वैसी बात ना हो जाए, एमिला ने उसे समझाते हुए कहा। डैनी ने एमिला को आश्वस्त करते हुए कहा, मैंने काफी सोच विचार कर लिया है। इस हफ्ते के आखिर तक मैं वैसा हो जाऊंगा जैसा कि तुम चाहती। बस एक मौका और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बुराई का सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। मुझे उम्मीद है कि कल किसी वक्त ये सारा मामला तय हो जाएगा। मुझे मालूम है एमिला कि इस तरह के मामले किस तरह तय होते हैं। मैं इस सुनहरे मौके को खोना नहीं चाहता। एमिला फोन पर बस उसकी बात सुनती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एमिला, तुम सुन रही हो ना? उधर से डैनी की आवाज आई। हाँ डैनी, मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रही हूँ, एमिला ने जवाब दिया। आई लव यू एमिला। अच्छा बाय, डैनी ने एमिला से विदा लेते हुए कहा और फोन काट दिया। सोमवार की सुबह एमिला क्लिनिक पहुंची। तब तक डॉक्टर ड्यूड नहीं आए थे। वो काफी देर इंतजार करती रही लेकिन डॉक्टर ड्यूड नहीं आए। उन्होंने उन्हें फोन मिलाया लेकिन उनका फोन भी नहीं उठा। उसने सोचा कहीं डॉक्टर ड्यूड बीमार ना हो गए हों। एमिला डॉक्टर ड्यूड के घर गई। वो घर पर भी नहीं थे। दोपहर के 2 बजे डॉक्टर ड्यूड क्लिनिक पहुंचे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो अपनी उम्र से 4-5 साल ज्यादा ही बड़े लग रहे थे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना डॉक्टर? एमिला ने उन्हें परेशान देखकर पूछा। डॉक्टर एक आराम कुर्सी पर धम से गिर गया और अपनी तेज सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। उसके बाद उसने दर्दनाक लहजे में कहना शुरू किया, सब कुछ गड़बड़ हो गया एमिला, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ डॉक्टर? मिस्टर हैरिसन, मुझे मालूम था कि वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे लेकिन इतनी संगीन हरकत की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कत्ल कर दिया है। कत्ल कर दिया है एमिला? एक आदमी का कत्ल है। पुलिस ने आज सुबह फोन पर मुझे इसकी सूचना दी थी। मैं उन्हें देखने गया था। उन्होंने एक आदमी को शूट कर दिया है जो कि उनसे कुछ रकम ऐंठना चाहता था। पुलिस ने मुझे मिस्टर हैरिसन का डॉक्टर होने के नाते बुलाया था। वो इस मसले को डॉक्टरी नजरिए से भी समझना चाहते थे। कौन था वो? एमिला ने जल्दी से पूछा। वो एक ब्लैकमेलर था, डॉक्टर ने कहा। वो मिस्टर हैरिसन को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने मिस्टर हैरिसन से कहा था कि अगर उन्होंने उसकी मांग पूरी नहीं की तो वो उनकी बीवी को उस नौजवान लड़की के बारे में सब कुछ बता देगा जिससे कि वो मोहब्बत करते हैं। उसने इस राज को राज रखने के लिए बहुत बड़ी रकम मांगी थी लेकिन हैरिसन उसे कुछ भी देने पर तैयार नहीं थे। वो उस आदमी से सारा मामला तय करने गए थे और साथ में पिस्तौल भी ले गए। वहां जब उस ब्लैकमेलर ने उन्हें राज फाश करने की धमकी दी तो दिमागी तौर पर कमजोर हैरिसन ने उसे वहीं शूट कर दिया। कुछ देर रुकने के बाद डॉक्टर ड्यूड ने दोबारा कहना शुरू किया। हालांकि वो कोई राज ही नहीं था जिस पर कि हैरिसन को ब्लैकमेल किया जाता। बेचारा हैरिसन एक ऐसी काल्पनिक लड़की से प्यार करता है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। वो दरअसल एक मानसिक रोगी है। दिलचस्प बात यह है कि उसके इलाज के लिए उसकी बीवी ही में से मेरे पास लेकर आई। धप की आवाज के साथ ही डॉक्टर ड्यूड का वाक्य अधूरा रह गया। उसने नजर उठाकर अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा। वो फर्श पर बेहोश पड़ी थी। गाथा में अभी आप सुन रहे थे नसरीन हिना की लिखी कहानी ब्लैकमेलर। आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।